नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के आरोपी को 10 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निगम की बुक प्रॉपर्टी में बिजली कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश जारी किया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम को 33 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि प्रदान की। दिल्ली सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक राजधानी में 500 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा और दिल्ली विधानसभा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय युवाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। उमर मोहम्मद नबी के साथ साजिश रचने के आरोपी कश्मीर निवासी अली को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने एनआईए की हिरासत में पूछताछ की अर्जी स्वीकार कर ली। एनआईए ने कल दिल्ली में एक व्यापक तलाशी अभियान के दौरान अली को गिरफ्तार किया था। इसके नाम पर हमले में इस्तेमाल की गई कार पंजीकृत थी। एनआईए दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस तथा कई केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है और कई राज्यों में अपनी जांच जारी रखे हुए है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के तहत दिल्ली नगर निगम को 33 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। इस राशि से निगम ने 28 मल्टीफंक्शन स्प्रिंकल खरीदे हैं। निगम ने बताया कि इसके अतिरिक्त 27 ट्रक माउंटेड वाटर टैंकरों पर स्प्रिंकलिंग सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है। निगम वायु गुणवत्ता प्रबंधन के प्रयासों को मजबूत करने तथा आवंटित निधि के प्रभावी और जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। निगम के अनुसार नई दिल्ली नगर निगम पालिका परिषद द्वारा शेष 8 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि के लिए कार्य किए जाएंगे। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रतिनिधि जमीनी स्तर पर जाकर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। श्री सूद ने पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने 10 वर्ष के कार्यकाल में नगर निगम के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण दिल्ली दयनीय स्थिति में पहुँच गयी है।
हमारी सरकार ने इस बात को प्रण लिया है कि हम स्वच्छता के मामले में दिल्ली को आगे ले जाएं। पिछले 2.5 सालों में आम आदमी पार्टी के जो नगर निगम के नेता थे, उन्होंने नगर निगम को पंगु कर दिया। 10 साल से उनकी सरकार थी, इन सब समस्याओं को निदान करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। ये सब समस्याएं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार को लीगेसी में मिली है। इन समस्याओं को हम गहराई से समझ रहे हैं।
दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा में आज स्वच्छ दिल्ली संकल्प के अंतर्गत मेगा स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने स्वच्छता अभियान की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छ दिल्ली संकल्प केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी का आंदोलन है। इस अभियान के तहत कचरे को अलग अलग करने, सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध और स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से एक रैली भी आयोजित की गई। दिल्ली के उप महापौर जय भगवान यादव ने आज नरेला क्षेत्र के पुटखुर्द और शाहबाद डेयरी का निरीक्षण किया। श्री यादव ने कहा कि वार्डों की साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि वार्डों की टूटी सड़कों, गलियों और पुलियाओं के निर्माण कार्य जल्द से जल्द आरंभ किया जाए ताकि स्थानीय निवासियों को असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान उप महापौर ने शाहबाद गांव में स्थित सामुदायिक भवन के पुनर्निर्माण के निर्देश भी दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निगम की बुक प्रॉपर्टी में बिजली कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश जारी किया है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस निर्णय से 1,25,000 से अधिक प्रभावित परिवारों को तत्कालिक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दिल्ली में उन संपत्तियों को भी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जा सकेगा जो नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के आधार पर बुक की गई थी। उन्होंने कहा कि नए आदेश के अनुसार डिस्कॉम अब केवल इस आधार पर कनेक्शन देने से इनकार नहीं कर सकती कि संपत्ति दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के लिए बुक की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से न केवल नागरिकों को राहत मिलेगी बल्कि बिजली चोरी और अनाधिकृत बिजली उपयोग पर भी प्रभावी रोक लगेगी। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज कस्तूरबा नगर स्थित अमर कॉलोनी का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री वर्मा ने बताया कि दिल्ली सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक राजधानी में 500 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा है। श्री वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों की सुविधाओं में सुधार के लिए लगातार कार्य कर रही है।
हर हफ्ते हर दिन कहीं ना कहीं किसी स्पॉट पर जाकर वहाँ पे सफाई अभियान को देखते हैं। मैं सारे हमारे डिपार्टमेंट के लोग जो पिछले 9 महीने से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी दिल्ली की सारी प्रमुख सड़कों का उनका टेंडर हो रहा है। जो सड़कें टूटी हुई है, सर्विस लेन टूटी हुई है, पार्क खराब है, सबवे खराब है, फुटओवर ब्रिज की हालत ठीक नहीं है, ये सभी ठीक कर देंगे।
दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने आज दिल्ली सचिवालय में श्रम कल्याण पर एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों से श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्रा ने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, मुआवजा सुधारों पर राजधानी में विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में श्रमिकों के स्किल डेवलपमेंट, लेबर विभाग में रिक्तियां भरने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई। दिल्ली में होने वाले नगर निगम के उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 12 वार्डों के सभी 580 बूथों पर क्यूआर कोड लगाने की घोषणा की है। आयोग ने बताया कि इन क्यूआर कोड के माध्यम से मतदाता वोट डालने के बाद अपने अनुभव के आधार पर आयोग से प्रतिक्रिया साझा कर सकेंगे। आयोग ने कहा कि यह पहल दिल्ली में पहली बार की जा रही है जिससे मतदाताओं के सुझावों का अध्ययन किया जाएगा। निगम के उपचुनाव इसी महीने 30 तारीख को होने हैं। भारत मंडपम में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज दिल्ली पुलिस के पवेलियन की स्थापना की गई। इस पवेलियन का उद्घाटन दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने किया। इस अवसर पर श्री गोलचा ने नए आपराधिक कानूनों, साइबर अपराधों, नशीली दवाओं के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
दिल्ली पुलिस के इस पवेलियन में 4 विषयों के स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें नए आपराधिक कानूनों और उनकी अनूठी विशेषताएं और प्रमुख प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आगंतुकों को नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव के बारे में शिक्षित करना, साइबर अपराध से निपटने के लिए रिपोर्टिंग प्रक्रिया और निवारक उपायों का प्रदर्शन तथा पुलिस परिवार कल्याण समिति के उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन शामिल किया गया है। दिल्ली पुलिस ने पवेलियन के लिए उपयुक्त स्थान और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेले के अधिकारियों के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है। नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत किसी भी प्रकार के युद्ध का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देंगे और उसे प्रायोजित करेंगे उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा।
आतंकवाद भी बहुत ज्यादा गिरावट आई, अभी इस बार तकरीबन में 31 मिलिटेंट मारे हैं जिसमें कि तकरीबन 61% जो पाकिस्तान टेररिस्ट हैं। रिक्रूटमेंट इस बार सिर्फ एक हुआ था और वो भी पकड़ा। तो कहने का ये मतलब है पत्थरबाजी नहीं होती है, नारेबाजी नहीं होती है, बंद नहीं होते हैं, सब चीजें रुक गई हैं। तो जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है, आशा और विश्वास की जो एक जागरूकता है वो बढ़ती जा रही है और भारत के प्रति जो एक सम्मोह है वो बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ का मोह भंग होता जा रहा है।
सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर था जो 88 घंटों में खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने कभी कोई गलत काम किया तो भारतीय सशस्त्र बल पड़ोसी देश को सिखाएंगे कि भारत के साथ जिम्मेदारी से कैसे पेश आना है। सेना प्रमुख ने कहा कि देश प्रायोजित आतंकवाद भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि वह हमेशा प्रगति और विकास की बात करता है। जनरल द्विवेदी ने बताया कि चाणक्य रक्षा संवाद का 3रा संस्करण 27 और 28 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के संवाद का विषय है प्रदर्शन से परिवर्तन, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के वीडियो का खंडन किया है। इसमें दावा किया गया है कि उन्होंने सेना के खिलाफ बयान दिया है। वायरल वीडियो में जनरल द्विवेदी दावा कर रहे थे कि केंद्र सरकार के आदेश पर गैर जातीय हिंदू सैनिकों को सेना से हटाया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया कि यह वीडियो AI जनित है और लोगों को गुमराह करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। थल सेना अध्यक्ष ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और न ही सरकार ने ऐसा कोई आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के दूसरे चरण की घोषणा की है। दूसरे चरण के अंतर्गत 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ 17 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंपनियों के प्रतिनिधियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि इन 17 परियोजनाओं से 60,000 करोड़ रुपए का उत्पादन होगा और 11,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे।
आज ECMS का सेकेंड सेट ऑफ अप्रूवल्स हुआ, जिसमें 17 एप्लीकेशंस विच विल बी इन्वेस्टिंग अबाउट 7,172 करोड़ रुपीस, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का संकल्प है, उसमें दिस विल बी अनदर वेरी मेजर अचीवमेंट। क्रिस्टल ऑसिलेटर्स जो कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल क्रिएट करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग इसकी चालू होगी। इन दोनों की खासियत ये है कि दीज आर वेरी वेरी हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स।
नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है, जो देश के तेज आर्थिक विकास और बढ़ते संपर्क को दर्शाता है। उन्होंने नई दिल्ली में 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के मंडप का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। श्री नायडू ने बच्चों में नागर विमानन ज्ञान के संचार, तकनीकी समझ के विस्तार और भविष्य के लिए कुशल कार्यबल को प्रेरित करने पर बल दिया।
बच्चे होते हैं तो वो आसमान में वो एयरक्राफ्ट को देखते हैं तो काफी सारी उम्मीदें उनके जगती है, तो वो पैशन को हमें करियर से जोड़ना है, तो इसलिए करियर गाइडेंस प्रोग्राम हमने किया। बट उसमें हमने देखा कि इसको और बढ़िया तरीके से और एक्सपैंड करना चाहिए, तो वी हैव टेकन वन अपॉर्चुनिटी एट दी IIT एंड देन वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस नाइस स्टॉल हियर वेयर वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन चिल्ड्रन, वी आर ब्रिंगिंग इन कॉलेज स्टूडेंट्स, टेलिंग देम व्हाट एयरपोर्ट्स आर अबाउट, व्हाट एविएशन इज अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट करियर्स आर देयर हियर।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय युवाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और गृहमंत्री अमित शाह के प्रभावी रणनीति ने नक्सलवाद के उन्मूलन के संकल्प को नई दिशा और निर्णायक गति दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में स्थानीय समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ने और विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाने के प्रयास अभूतपूर्व परिणाम दे रहे हैं। और अब बात मौसम की। राजधानी में आज मौसम साफ रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी में वायु गुणवत्ता की स्थिति बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 7 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 दर्ज किया गया, जो वायु की बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के आरोपी को 10 दिन के लिए NIA की हिरासत में भेजा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत दिल्ली नगर निगम को 33.74 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निगम की बुक प्रॉपर्टी में बिजली कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश जारी किया। दिल्ली सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक राजधानी में 500 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा और दिल्ली विधानसभा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय युवाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।